शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक बहुत ही प्यारा गीत सुना, आपने भी ध्यान से सुना होगा। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण करने शिव ने जिसमें स्थान लिया। तो भारत की भूमि पर कौन वो दिव्य पुरुष थे जिसने जन्म लिया और जिनमें शिव परमात्मा ने दिव्य प्रवेश किया, आज उसकी मैं जीवन कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, या उनकी जीवन कहानी सो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास, क्योंकि आप ही वो बीज बने जिसने एक बीज रोपा और आज हम देख रहे हैं यह वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे संसार में फैल चुका है। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और कैसे यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन्होंने आरंभ किया, वो एक कहानी के रूप में आपको मैं सुनाना चाहूंगी। मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि मैं उनसे मिली थी, वो छोटी थी तब, लेकिन उनसे मिलकर मुझे यही महसूस हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता हैं, अलौकिक पिता हैं। शरीर का पिता तो हमने देखा ही नहीं था, वे मैं बहुत छोटी थी तब वे गुजर गए थे, इसलिए बाबा को जब मैंने देखा लगभग 11 वर्ष की उम्र थी मेरी, तो मुझे महसूस हुआ कि यही मेरे अलौकिक पिता हैं। और बाबा ने भी मुझे वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। तो ये ईश्वरीय परिवार है और हम सब यहाँ एक पिता परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा की संतान के नाते से हम सभी आत्मा रूप में भाई भाई हैं, पर ब्रह्मा पिता जिसके माध्यम से शिव परमात्मा ने नई दुनिया की स्थापना का कार्य आरंभ किया है आज से 78 वर्ष पूर्व, तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। कई हमसे पूछते हैं ये आपके कौन लगते हैं, इनके फोटो आप यहाँ हम देखते हैं कई स्थानों पर, ये क्या आपके गुरु हैं या क्या आप इनको भगवान मानते हो? तो न हम इनको भगवान मानते न ये हमारे गुरु हैं, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है, कोई ऐसी गद्दी नहीं है जहाँ वो गुरु ही बैठ सकता है। ये तो एक कुर्सी है जहाँ पर जो क्लास कराता है वो बैठता है। इनको भगवान कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि कोई भी देहधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता, परंतु ये हमारे अलौकिक पिता जरूर हैं और इनको परमात्मा ने ही प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, जिनके द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, इनका पूर्व जीवन क्या था, वो आपको बताना चाहेंगे, परंतु कैसे इनके द्वारा परमात्मा ने जो कार्य आरंभ किया और आज पांचों ही द्वीपों में 137 से भी अधिक देशों में लगभग 9000 शाखाओं में यह कार्य विश्व भर में चल रहा है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार के भाई बहनें यहाँ इन क्लासेस में आकर ज्ञान और राजयोग से अपनी आत्मा का श्रृंगार कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, हीरे जवाहरात का धंधा करते थे। सबसे बड़ा व्यापार हीरे जवाहरात का माना जाता है। और कैसे बाबा ने एक ही जन्म में, एक ही जीवन में उस हद तक सफलता पाई। एक साधारण परिवार में जन्मे थे, हैदराबाद सिंध के एक गांव में 1876 में। और इनके पिता एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन बचपन से ही कोई पढ़ाई का शौक नहीं था, बिजनेस का शौक था। बिजनेसमैन बहुत शुरू से ही जैसे वो थे, तो कैसे ही बहुत ही जल्दी आप आगे बढ़े और हीरे जवाहरात का व्यापार करने लगे। आपकी बहुत बड़ी शोरूम थी कलकत्ता में। उस समय अंग्रेजों का राज्य था भारत में और कलकत्ता मानो कैपिटल थी उस समय अंग्रेजों की। वे अधिकतर वहीं से भारत में प्रवेश करते थे। तो एक और अंग्रेज उनके ग्राहक थे और दूसरी ओर राजाएं महाराजाएं भारत में राज्य करते थे। नेपाल में भी उनका राज्य था, तो बाबा अक्सर उन राजाओं महाराजाओं से मिलते थे, क्योंकि वे इनको बुलाते थे कि या हमें हमारी रानियों के लिए जेवर चाहिए। बहुत ही विश्वास था उन राजाओं का बाबा में। तो कैसे बाबा उनके पास जाते थे, वो जेवर पसंद करते थे, मानो कि बहुत ही सफल व्यापार था, कोई कमी नहीं थी। और पांच बच्चे थे, लौकिक परिवार उनका बहुत सुखी था, तीन बेटे दो बेटियां, और लगभग सबकी शादी हो चुकी थी, विवाहित जीवन में थे, पोतरे दोतरे सब थे, मानो इतना बड़ा परिवार, परंतु बहुत ही भक्ति भावना वाला परिवार। बाबा रोज सुबह उठ करके कैसे नहा धोकर के गीता का पाठ करते थे और सारा परिवार उनके साथ बैठता था, जैसे सत्संग बाबा कराते थे, गीता उनको कंठस्थ थी। और घर में कई बार संतों को बुलाते थे, साधु संत महात्मा उनके घर में आते थे, सत्संग करते थे, मानो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का वातावरण था उनके परिवार में। तो नामी ग्रामी भी बहुत थे समाज में, क्योंकि कोई भी गरीब घर की बेटियां के माँ बाप आते थे कि हमको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उनकी दहेज के लिए भी बाबा पैसा देते थे, धन देते थे। मानो जितने ही वो धनी थे उतने ही बड़े दानी भी थे, और जितने ही बड़े दानी थे तो उतना ही बड़ा नाम था उनका समाज में, और उतने ही बड़े भक्त थे। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा भारत में जहां वे न गए हो और दर्शन न किया हो। तो इस हिसाब से प्रसिद्ध तो थे ही, परंतु एक बात की उनको खोज थी, सत्यता की खोज। ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं संसार में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है हमें, क्या करना है, यानी ये खोज थी। क्योंकि धन कमाना ही बड़ी चीज नहीं है, मान शान इज्जत मर्तबा महिमा यही कोई सबसे बड़ी बात नहीं है, परंतु सत्य को पहचानना। तो उसकी पहचान के लिए उसको वे ढूंढते रहे और कई शास्त्र पढ़ डाले, कई गुरु की अपने जीवन काल में 12 तो गुरु किए उन्होंने। वैसे तो कोई एक ही गुरु करता है, समझता बस मुझे सब मुझे मोक्ष मिल जाएगा, परंतु बाबा ने 12 गुरु किए, क्योंकि उनके अंदर में वो संतुष्टता जो होनी चाहिए वो नहीं थी, सत्य लगता था जैसे बहुत दूर है। तो आखिर कहां से सत्य मिले, इसके लिए भक्ति भी बहुत करते थे। विष्णु के भक्त थे, विष्णु उनके इष्ट थे, और विष्णु की भक्ति में घंटों घंटों लगे रहते थे। उनके पॉकेट में सदा विष्णु का चित्र था, उनकी दुकान पर, उनके घर में, मानो विष्णु ही उनका उद्देश्य था, उनका आधार था। कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव कुल के थे। तो कैसे अचानक एक दिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि बाबा ध्यान में तल्लीन थे अपने इष्ट के, कि अचानक बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बाबा को समझ में नहीं आया ये विष्णु चतुर्भुज जो उनके सामने खड़े हुए, इतने चेतन रूप में उनके सामने आए और उनको एक वरदान दिया। वो वरदान क्या था? अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी मेरे जैसे हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने खड़े रहे और ये वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और उसके बाद देखा बाबा ने उसी साक्षात्कार में कि विष्णु के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न जैसे मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो भिन्न भिन्न स्वरूप बाबा के सामने आते गए, एक के बाद एक के बाद एक, और सब ने वो एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। अब जैसे बाबा उस ध्यान से नीचे उतरे, बाबा को तो समझ में नहीं आया कि ये सब मैंने ये देखा, वो तो ठीक है, मुझे अपने इष्ट के दर्शन हुए, मेरी भक्ति का मुझे फल मिला है, लेकिन ये वरदान तत्त्वम, ये तो बड़ा विचित्र वरदान है। क्योंकि अक्सर करके जब भी किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, कोई देवी के भगत है, कोई हनुमान के, गणेश के, किसी के भी भक्त हो, कोई भी उनका इष्ट हो, लेकिन जब वो उनके सामने प्रकट होता है तो जो वरदान मिलता है उनसे वो यही होता है तथास्तु। जैसे देवी सामने आई, तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी, वैसे ही होगा, तथास्तु। अब ये वरदान था तत्त्वम, तो बाबा को लगा मैं इन जैसा कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, इनका दास हूं, यही कहते आए हैं भक्ति में, यही समझते हैं कि हम तो दास हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, मिट्टी है, चरणों की धूल है, आदि आदि, तो मैं इन जैसा कैसे हूं। तो बाबा ने अपने गुरु से ये प्रश्न किया कि इसका मतलब क्या है। तो गुरु ने उनको एक बात कही जिस पर बाबा का बहुत विचार चला कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ महान कार्य करवाना होगा, इसलिए ऐसा आपको साक्षात्कार हो और ऐसा वरदान मिला कि तुम मेरा ही कार्य करो, मेरे जैसे होकर। तो बाबा को लगा मुझे ईश्वर का कौन सा कार्य करना है, मुझे बताए, हुक्म करे, मैं तैयार हूं, कोई भी कार्य भगवान हमें दे हम तैयार है करने के लिए, लेकिन क्या मुझे करना है वो भी तो मुझे बताए। तो गुरु ने उनको कहा कि उसके लिए आप एकांतवास में चले जाओ, और हो सकता है उस एकांतवास में आपको कुछ और प्रेरणाएं मिले जिसमें आपको यह बताए भगवान कि आपको आगे क्या करना है, आपको तैयार किया है उसके लिए। तो बाबा अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर बनारस चले गए, हैदराबाद सिंध में ये उनको अनुभव हुआ, और बाबा बनारस चले गए। कलकत्ता और हैदराबाद तो बाबा आते रहते थे, उस समय ट्रेन सब जगह चलती थी, एक ही अविभाजित भारत था। तो बाबा बनारस चले गए जहां उनके मित्र रहते थे, और मित्र अक्सर उनको बुलाते थे कि आप आकर कभी संतों का संग करने के लिए बनारस आए, गंगा घाट पर आपको बहुत संत मिलेंगे, आप उनका संग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनका निमंत्रण तो था ही, तो बाबा बनारस गए, सोचा मैं वहां एकांतवास करूंगा और जो भगवान को मुझे कहना है वो मुझे प्रेरणा देंगे। तो कैसे बाबा बनारस में उनके मित्र की कोठी के बाहर, बहुत बड़ा बगीचा था बनारस में, वहां पर बाबा पेड़ के नीचे बैठे अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे कि अचानक बाबा को इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा तीन रूप से इस सृष्टि का विनाश हो रहा है, एक और अणु युद्ध के रूप में विनाश, दूसरी ओर ग्रह युद्ध के रूप में विनाश और तीसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अवश्य दुनिया से बहुत वैराग्य आ गया। आज कोई भी ऐसा भयंकर दृश्य देखे उसे वैराग्य आना स्वाभाविक है, परंतु भगवान से यही कहा, भगवान ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी, इतनी सुंदर आपकी रचना ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर ये आपने ये संसार रचाई क्यों? अगर ऐसे ही खत्म होने वाला है तो ये रचाई क्यों? हे भगवान इसका भी तो उत्तर दो, क्योंकि सत्य की खोज तो थी और ये उनको सत्य लगा कि ये दुनिया अब गई की गई, खत्म होनी है अणु युद्ध से, ग्रह युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से, क्योंकि ये तीन बड़े बड़े रूप है जो महाविनाश ला सकते हैं। परंतु क्या इसका उत्तर है कि दुनिया बनाई क्यों, अब ये कौन दे? लेकिन फिर भी बाबा बहुत शांति में एकांत में चले गए ताकि और उनको जवाब मिले कि आखिर इसका रहस्य क्या है। तो अचानक एक दिन बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने एक अखंड ज्योति एक महतत्व के रूप में देखा, सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर और उसमें एक जैसे दीपकों का एक वृक्ष देखा, उल्टा झाड़, उसमें बीज उसका ऊपर और एक उल्टा झाड़ नीचे, वास्तव में ये आत्माओं की निशानी, आत्माएं जो सितारे के समान हैं वो उल्टा वृक्ष की तरह है, परमात्मा जो बीज है वो जैसे ऊपर और फिर ये वृक्ष के रूप में ये आत्माओं का झाड़, ये बाबा ने देखा। पर बाबा को तो कुछ समझ भी नहीं आया कि ये मैंने क्या देखा। फिर बाबा जैसे ही देखते रहे, अचानक बाबा ने देखा कि उस झाड़ से, उस नजदीक के जो बहुत पावरफुल लाइट थी, वहां से छोटे छोटे सितारे नीचे आते गए उस पेड़ से, जैसे वो प्रकाश के पेड़ से वो नीचे आते गए। जैसे बाबा देखता रहा ये कहाँ जा रहे हैं, और देखते देखते बाबा ने देखा जो वो संसार इतना बिल्कुल विनाश हो चुका था, धीरे धीरे वो सितारे धरती पर आकर के एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप लेता गया। और देखते देखते बाबा ने, जैसे एक फिल्म होती है उसी प्रकार बाबा ने देखा कि वो देवताएं चारों ओर विचरण करने लगी और प्रकृति अपने सुंदरतम स्वरूप में निखरने लगी, मानो पांचों ही तत्व इतने सुंदर स्वरूप में दिखाई दिए कि बाबा को जैसे बाबा की नजर ही उनसे न उतरे कि इतना सुंदर नजारा मैं देख रहा हूं, क्या है इसका रहस्य। और फिर बाबा ने क्या देखा कि उस संसार में एक बहुत सुंदर सोने का महल, जिसमें हीरे जवाहरा जड़े हुए थे, और उस महल से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बाहर आए और जैसे आंगन में विचरण कर रहे थे और सब उनका इतना स्वागत कर रहे थे, और एक बहुत सुंदर दृश्य। और एक आवाज बाबा को आई एक आकाशवाणी के रूप में, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद यह सतयुगी सृष्टि आनी है, इस नरक के विनाश के बाद एक स्वर्गीय दुनिया आनी है और उसके लिए तुमको तैयार रहना है, और ये दुनिया तुमको बनानी है। ये आवाज बाबा के कानों में गूंजने लगे, ये दुनिया मुझे बनानी है। फिर बाबा का, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, यही बाबा ने कहा। तो ये कौन मुझे कह रहा है और क्या है इसका राज, इसका रहस्य, मैं कैसे समझूं, कैसे मैं बनाऊंगा, ये भी तो बताओ। बस ये दृश्य बाबा ने देखा और वो ओझल हो गया। अब ये कार्य भगवान ने उसको दिया, परंतु कैसे करना ये तो बताया नहीं। परंतु बाबा को लगा कि इतना बड़ा मुझे कार्य तो दिया है, पर उसके लिए और मुझे भी जरूर प्रेरणा मिलेगी, पर मैं ऐसे बैठा रहूं यहां बनारस में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर से निमंत्रण आया, पोतरा जन्मा था, उनके पार्टनर जो कलकत्ता में रहते थे उनका शोरूम संभालते थे, पार्टनर थे, बहुत बड़ी शोरूम थी उनकी, तो वो भी उनको बुला रहे थे, राजाएं महाराजाओं का निमंत्रण था। अब बाबा बनारस में बैठे रहे, एक मास हो गया, तो उनको बुलावा तो आता ही रहा, परंतु बाबा ने सोचा कि अब मुझे जाना तो होगा ही। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, नजदीक ही था, तो कलकत्ता में जाकर अपने पार्टनर को सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे अनुभव हुआ है, अब भगवान ने मुझे इतना बड़ा काम दिया है, परंतु कैसे करना ये मुझे पता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये जो मेरा धंधा है इसको मैं आगे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे बाबा अपने दुकान पर पहुंचे तो जो हीरे थे, हीरों का व्यापार था, तो हीरे तो बाबा को पत्थर जैसे दिखाई देने लगे, पत्थर, अब कहां पत्थर और कहां हीरा, लेकिन बाबा को दोनों के अंतर का समझ में, दोनों का अंतर ही नहीं मिला। तो बाबा ने कहा मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान मुझे सच्चे हीरे दे रहा है, तो पत्थर है, तो मुझे भगवान का जो आदेश मिला है उसका पालन करना है, तो मुझे ये व्यापार अपना यही वाइंड अप करना है। फिर भी कैसे समझा बुझा करके आखिर अपने पार्टनर को मनाया कि जितना मेरा हिस्सा है मैं ले लूंगा और मुझे वापस हैदराबाद सिंध जाना है और ये बिजनेस आप संभालो। तो तार के पीछे तार आती रही, उस समय टेलीग्राम्स थे, जल्दी आओ हैदराबाद सिंध, तो बाबा ने तार का उत्तर तार में दिया, बड़ा नशे का जवाब दिया, और जवाब क्या दिया, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को हुआ रेल का राही। अल्लाह माना खुद, बे माना उसका पार्टनर, तो अल्लाह को तो अल्लाह मिल गया और बे को दुकान मिल गई, तो झूठी बादशाही उसको मिली, आई तार अल्लाह को, आपकी तार हमें मिली, हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से आ रहा हूं वापस। अब परिवार वालों ने जब ये तार पढ़ी तो उनको तो समझ में नहीं आया क्या है इसका मतलब, लेकिन लास्ट लाइन जरूर समझी कि हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से वापस आ रहा हूं। अब जैसे ही बाबा वापस पहुंचे तो विनाश और स्थापना का कार्य, और जो उन्होंने दोनों दृश्य देखे, बड़े ही वो उनकी छाप बाबा की बुद्धि में थे, तो बिल्कुल एक बेहद का वैराग्य उनके जीवन में था। तो जैसे बाबा अपने घर पहुंचे तो बिल्कुल सिंपल, क्या उनका ठाट था, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, जो राजाएं महाराजाएं उनको कहते थे कई बार कि भगवान ने बड़ी भूल की, बनाना तो आपको चाहिए था राजा, क्योंकि इतनी रॉयल्टी थी बाबा में, इतनी पर्सनालिटी थी, और जब वो अंग्रेजों की ड्रेस पहनते थे तो बड़े ही रईस लगते थे, तो भगवान ने ये भूल की जो आपको नहीं बनाया। तो बाबा कहते थे भगवान भूल नहीं कर सकता है, इसमें भी कोई राज होगा। अब हम समझते क्या राज होगा, कि वही जो सतयुगी देवताएं जो संपूर्ण पावन थे वो साधारण रूप में हैं। तो बाबा ने अपनी ड्रेस को बिल्कुल सिंपल, धोती कुर्ता कभी पहनते थे, तो लगभग 60 वर्ष की उनकी आयु थी, और उसी समय जैसे बाबा ने सब कुछ त्याग किया और बिल्कुल जैसे अपने घर में एकांत वास में रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक बाबा अपने कमरे में बैठे थे कि उनको ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा एक दिव्य प्रकाश, बहुत तेजोमय प्रकाश, इतना तेजोमय था लेकिन फिर भी इतना शीतल था, इतना शांत था, इतना प्रेममय वो स्वरूप था, जो बाबा देखते ही रहे। और देखते देखते बाबा ने क्या देखा कि वो स्वरूप बाबा के करीब आया, ज्योति, और वो ज्योति जैसे बाबा के करीब आई, देखते देखते बाबा ने देखा वो इनमें प्रवेश हो गई, जैसे अंदर आते यहां से प्रवेश हो गई। एकदम बाबा ने बहुत शक्ति का अनुभव किया और एक बाबा की आंखें बंद हो गई और अंदर ही अंदर उस तेज को महसूस करने लगा। बाबा को कुछ समझ में तो आया नहीं, परंतु जब बाबा ने आंखें खोली तब तक उनका परिवार उनके सामने था। उन्होंने पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया? क्योंकि एकदम चेहरा बिल्कुल तेजोमय था, ललाट तेजोमय, आंखें एकदम जैसे प्रकाशवान। तो बाबा ने कहा, कोई तेज था, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, और वो शक्ति मेरे में प्रवेश हो गई, पर मुझे कुछ मालूम नहीं आ गया, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब ये शिव परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ। पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ, फिर शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, बस अब मुझे कोई शक्ति अंदर में जैसे मुझे मिली है ये उसको महसूस हुआ। बस फिर तो मानो चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हुए? सबसे पहला चमत्कार, हाँ, जब प्रवेश हुआ शिव परमात्मा उनमें, तो एक आकाशवाणी उनके मुख से निकली, मानो उनके मुख से आवाज निकली जो उनके परिवार वालों ने सुनी। वो आवाज क्या थी? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। मानो शिव परमात्मा ने अपना परिचय बाबा के मुख से दिया। अब ये तो उनके घर वालों ने सुना, पर क्या था इसका अर्थ तो उन्होंने नहीं समझा कुछ भी। तो जब बाबा ध्यान से उतरे तो कैसे उनको वो शक्ति का अनुभव तो हुआ उनके अंदर में, परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई। परंतु क्या चमत्कार हुए कि जो बाबा को देखता था, समझो बाबा खड़े हैं और खड़े बाबा को देखता था, और उनको देखते ही उनसे यानी ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। जैसे खड़े हैं और वो सफेद वस्त्रधारी रूप नहीं दिखा उनको, लेकिन मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण जैसे उनके सामने खड़ा है, ये उन्हें वो देखते रहे। और अगर किस पर बाबा की दृष्टि पड़ी, वो दृष्टि जैसे पड़ी वो ध्यान में चला जाता था कई बार, और अंदर ही अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके और जैसे उनके साथ रास कर रहा है, बस जैसे सुध बुध खोया हुआ था। तो कोई बाबा को देखकर बाबा को कृष्ण रूप में देखते थे, और कोई पर अगर बाबा की दृष्टि पड़ी वो ध्यान मग्न हो जाता था और जैसे कृष्ण के साथ रास कर रहा है, ये अनुभव होने लगा वहां। लोगों को तो समझ में नहीं आया, बाबा को खुद भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा रोज सुबह सत्संग करते थे अपने परिवार वालों के साथ, तो ये जो अफवाह, मानो एक जो बात थी, आवाज फैली कि दादा लेखराज के पास कोई ऐसा जादू है, जो उनको देखता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, चलो हम भी चले, हम भी चले, हाँ चले चले हम भी। सुबह सुबह उनका सत्संग होता है तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओम, लंबे टाइम तक जैसे ओम की ध्वनि करते थे और सब जैसे वो ध्यान मग्न हो जाते थे। अब ये जो न्यूज चारों ओर फैली एक चमत्कार के रूप में थी, मानो एक क्रांति के रूप में थी। इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि इतनी बड़ी न्यूज फैल गई इसकी कि अमेरिका में 1936 की ये बात है, तो कैसे अमेरिका के अंदर टाइम मैगजीन निकलती है हर महीने में जिसमें इंटरनेशनल न्यूज आती है, उसी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है भारत में, जिनके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। मतलब ये तो ये एक क्रांति फैल गई, और हैदराबाद सिंध में ये आवाज फैला, चलो चलो हम कृष्ण का दर्शन करना है तो चलो इनके पास, कृष्ण का दर्शन करना है तो चलो, तो आने लगे। अब बाबा गीता उठाकर पढ़ते थे, सोचा कि हम गीता पढ़ेंगे सवेरे सवेरे, उनका नियम था। और जैसे किताब उठाई, पुस्तक उठाई, शिव परमात्मा की प्रवेशता हो जाती थी और वो बोलने लगते थे। बाबा सोचते, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये कौन सी शक्ति मेरे द्वारा बोल रही है। बाबा को खुद भी समझ में नहीं आया। और फिर क्या हुआ उसके बाद, और चमत्कार क्या हुए कि लोगों को घर बैठे भी, जिन्होंने बाबा को कभी नहीं देखा, उनको भी साक्षात्कार होने लगे। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और श्री कृष्ण को जैसे उनके नजदीक जा रहे हैं तो कृष्ण दूर हो जाता है और वो कहता है अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। ये जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो उस प्रकार से पहले इनके पास जाओ। अब कई तो बाबा को जानते ही नहीं थे, ये कौन है। अभी इस प्रकार दूसरी बात क्या हुई कि उसमें विशेष करके कन्याएं और माताएं, उनको ज्यादा ये अनुभव होने लगे, पुरुषों को कम, स्त्रियों को। और उस समय वो हैदराबाद सिंध की जो बात आपको बताएं, उनको कहते थे सिंध वर्की, सिंधी लोग जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सिंधी लोग, उनकी बिजनेस सारे विश्व में, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां उनकी बिजनेस, श्रीलंका, मना उनके बिजनेस करते थे। और उनकी जो पत्नियां थी, बच्चियां, मतलब लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां, वो सब चार दीवारों में, और घूंघट करते थे, पर्दे नशीन रहते थे, वो सब बातें थी। स्त्री को कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, और पुरुष तो सही दुनिया घूमते थे। तो अब ये साक्षात्कार बहनों को, माताओं को, कन्याओं को घर बैठे हुआ, तो वो ढूंढने लगी कौन है ये, कौन है जिनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो क्या हुआ, कैसे अब कन्याएं माताएं आने लगी बाबा के पास सत्संग में दूर दूर से। तो आप है ओम राधे, जिनको हम मम्मा कहते थे, तो इनका नाम राधे था। अब इनकी कहानी क्या थी कि इनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और श्रीलंका में इनकी बिजनेस थी, लेकिन अचानक बहुत घाटा पड़ा तो दिवाला निकाला ना उनका, तो इतना उनको सदमा पहुंचा जो हार्ट फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। अब ये जो लड़की थी ये तो बहुत ही होशियार थी, स्कूल में हर टैलेंट में वो होशियार थी, अवार्ड्स लेती थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब कलाओं में जैसे निपुण थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अब माँ को जब देखती थी कि माँ, क्योंकि पिताजी गुजर गए, तो माँ को देखती थी तो वो उससे सहा नहीं गया, क्योंकि अगर कोई स्त्री विधवा बनी मानो तो एक साल तक काले काले कपड़े पहन के, बाल खुले, रोते रहना, छाती पीटते रहना, वो सियापा करते ना उस प्रकार से करते रहना, और जैसे कि सारा जीवन बर्बाद। कहीं बाहर भी वो निकल नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर निकले भी ना तो जिस दुकान के वहां से जाए मानो, वो दुकान वाले के ये आइए विधवा, आइए विधवा, तो वो जाने के बाद वो पानी फेंकते थे, कहीं ये इनका वो हमारे ऊपर उसका कोई जब सुगुन ना आए या ये कुछ ना, मानो इतना जैसे तिरस्कार। तो नारी पर शोषण, नारी पर तिरस्कार, ये सब उस समय की बातें थी। अब जब ये तो बहुत ही टैलेंटेड थी, कुमारी थी, 15-16 साल, 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, और बहुत इनके फादर ने तो इसको बहुत ऊंचा रखा था, परंतु अचानक डेथ हो गई। तो माँ की हालत उसे देखी नहीं गई, तो इसने अपनी माँ को कहा कि मैं तुमको बाबा के पास ले जाऊंगी, तुम ऐसे रोती क्यों हो इतना। तो जैसे ही अपनी माँ को ले गई बाबा के पास, तो बाबा की, इसने बाबा को देखा, एकदम बाबा से उनको कृष्ण का दर्शन हो गया, और देखते देखते जो रोती रोती आई वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण को देख रही है जो उसका इष्ट था। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मानो ये न्यूज बन गई, न्यूज वाले तो कैसे भी कर डालेंगे अब, क्योंकि ये भी फेमस थी हैदराबाद सिंध में। अब इसके बाद दूसरी बहन आपको दिखाऊं, दादी प्रकाशमणि, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 38 साल तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, मुख्य प्रशासिका के रूप में रही। आप भी 15 साल की उम्र में इस ज्ञान में आई। अब इनकी फिर दूसरी कहानी है, इनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो अपनी बेटी की जन्म पत्री जब उसने निकाली थी पिता ने, तो जैसे इनकी जन्म पत्री से ये उनको महसूस हुआ कि मेरी बेटी मीरा जैसी बनेगी, अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी, भगवान को अर्पित करेगी, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अपनी बेटी के प्रति उसको बहुत भावना थी कि मेरी बेटी तो कृष्ण की ही है, तो इसके लिए कृष्ण का मंदिर बना के दिया था पिता ने, जहाँ रोज सुबह शाम भक्ति करती थी, जगाती थी, सुलाती थी, मतलब उसमें थी और पढ़ती भी थी, बहुत होशियार भी थी, लेकिन दुनिया का कोई आकर्षण इन्हें नहीं था। अब इनको सवेरे सवेरे 4 बजे ये साक्षात्कार हुआ, जिसमें उसने कृष्ण का साक्षात्कार किया और उसके बाद कृष्ण कहता मेरे से मिलना है तो इनसे मिलो, तो बाबा देखा। अब बाबा को तो जानती नहीं थी, लेकिन ये जरूर सुना था कि क्योंकि शहर में आवाज तो थी ना कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। बस ये जो अनुभव उसने किया उसने किसी से शेयर नहीं किया, अपने तक ही सीमित रखा। तो जब स्कूल गई तो स्कूल में उसकी एक फ्रेंड ने कहा कि देखो यहाँ ऐसा सत्संग होता है, कृष्ण के दर्शन होता है, चलो हम लोग चलेंगे। लड़कियां आपस में नहीं, जैसे कोई सेल है, चलो चलो, हाँ चलो चलो। तो अब ये धुन हो गई, तो इसने कहा मैं अपने पिताजी से पूछूं, क्योंकि पिता से पूछे बिना कहीं पैर नहीं रखना, मतलब ये उस समय बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थे सब। तो पिता से पूछे ही पूछे, उसके पहले इसके पिता ने इसको कहा कि बेटी मैंने सुना यहाँ सत्संग होता है और कृष्ण के दर्शन होते हैं, आप वहां जाओ। जैसे नहीं बेटा बेटी को कहे, पिता बेटी को कहेगा जाओ तुम देख के आओ, माँ कहेगी जाओ वहां सेल है, जा देख कर आओ क्या है, क्या मिलता है। नहीं तो बाप ने बेटी को कहा कि आप जाओ देख कर आओ और क्या है वहां देखो, फिर मुझे आके बताना। तो जैसे ही ये गई सत्संग में, तो इसने बहुत ही अनुभव सुंदर किया। बस बाबा को तो क्या देखा, जैसे बाबा की दृष्टि इन पर पड़ी और ये ध्यान में चली गई और अंदर ही अंदर जैसे कृष्ण का दर्शन कर रही है, रास कर रही है बस, क्योंकि कृष्ण की भक्ति तो थी। अब सारी सभा पूरी हो गई, सब चले गए, ये वहीं की वहीं बैठी रही वैसे अंदर ही ध्यान में। और बाबा इसके पिता को जानते थे क्योंकि ज्योतिषी थे, तो छोटा सा शहर हर एक दो को जानता है, जो भी बिजनेसमैन है सब एक दो को जानते थे। तो बाबा इनके पिता को जानते थे और राधे के पिता को भी जानते थे, बिजनेसमैन थे सब। तो इनका पता था कि ये तो जैसे कृष्ण की ही है, तो बाबा ने उनको बुलाया जब ध्यान से उतरी। अब उस समय क्या है कि एक और बात हो रही थी कि बाबा ने एक स्कूल खोला था, बच्चों का स्कूल, क्योंकि बाबा चाहते थे कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ गीता का ज्ञान नहीं मिलता। और बाबा ग्रंथ भी बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, ग्रंथ भी बाबा को कंठस्थ था, क्योंकि सिंधी लोग ग्रंथ भी पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं दोनों। मैं भी सिंधी फैमिली की हूँ तो मेरे घर में भी ग्रंथ भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, तो मुझे भी दोनों आता है। हमारे चाचा जी कंपटीशन रखते थे कौन ग्रंथ के ज्यादा माना, वो जितना याद रहेगा चौपाई वो जो पढ़ते ना, जिसको ज्यादा याद रहेगा उसको उन बच्चों को इनाम देते थे, मतलब एक कॉम्पिटिशन। तो बहुत ही हमें अच्छा लगता था। तो बाबा भी दोनों पढ़ते थे, जानते थे सब। अब जैसे ये आई तो बाबा ने इनको कहा देखो मैंने एक स्कूल खोला है, उसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या तुम टीचर बन के बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देना है, गीता का ज्ञान देना है, ग्रंथ का ज्ञान देना है, ताकि ये सब उनको मिले, बाकी तो दुनिया का ज्ञान तो बहुत देते हैं। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो बाबा ने कहा अगर आपका पिता छुट्टी दे तो उनको कहो कि मैं ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करती हूँ। ये जैसे शिव बाबा ने, परमात्मा ने उनसे कहलवाया। अब ये गई पिता के पास तो पिता ने कहा बेटी तुम तो वैसे ही कृष्ण को अर्पित हो, भगवान को अर्पित ही हो। तो उसने लिख के दी चिट्ठी और जैसे ये गई बाबा के पास, उसके बाद फिर स्कूल नहीं गई, बस पूरा हुआ। वो 10वीं कक्षा जो पढ़ती थी वही मम्मा जो राधे थी वो भी ऐसे ही। अब एक एक करके कैसे बाबा के पास समर्पित होने लगे, परिवार के परिवार जिनको मतलब छुट्टी मिली वो समर्पित होते गए। ये बोर्डिंग स्कूल बाबा ने बनवाया था, बच्चे वहीं रहते थे और बच्चों को उसी माहौल में पढ़ाया जाता था। अब बहुत ही सुंदर सबको ज्ञान मिलने लगा, एक मानो अलौकिक परिवार बन गया। अब क्या हुआ, कन्याएं माताएं तो ज्यादा आने लगी, कोई तो समर्पित भी होती रही। अब परमात्मा ने उसी के बाद एक दूसरा एक क्रांति फैलाई। दूसरी क्रांति क्या थी, परमात्मा शिव का आदेश सबको मिला कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। ये प्रतिज्ञा करो कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब प्रतिज्ञा कर ली इन्होंने। अब जब ये प्रतिज्ञा की, अब ये भी बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि दादा लेखराज के पास जो भी बच्चे आए या जो भी कुमारियां आई, माताएं आई, क्योंकि वही ज्यादा थी, इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब जो इनके रिश्तेदार थे वो तो नाराज हो गए कि ये क्या, हाँ ये दादा लेखराज ने कैसे कर दिया, ये तो अभी छोटी है, दुनिया देखी नहीं, ये सब नहीं किया, इनको ऐसे कैसे इनको इनसे प्रतिज्ञा करवा ली। तो बाबा के पास गए, बाबा ने कहा ये मैंने नहीं कराई है, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है, ये परमात्मा ये कार्य कर रहा है और मुझे भी ईश्वर का आदेश मिला, मैं भी तो अपने परिवार में रहता हूं और मुझे भी भगवान ने ये आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। मानो एक थोड़ा सा काफी कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन ईश्वर का कार्य कौन रोक सकता है, परमात्मा को अपना कार्य करना था और परमात्मा ने ये दूसरा मानो दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांति थी कन्याएं माताएं ज्यादा आई और तीसरी क्रांति थी कि कैसे उस समय परमात्मा ने इनको आदेश दिया कि अपनी पवित्र अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। और उसके बाद करीब 8 बहनों के नाम पर बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी। परमात्मा का आदेश मिला कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी जो भी बाबा की थी वो सब कन्याओं माताओं के नाम पर अर्पित कर दी या विल कर दी, क्योंकि ये भी आदेश था जब नारी शक्ति आगे बढ़ेगी तब विश्व का कल्याण होगा। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान है वहां देवताओं का वास है। वैसे भी भारत में हम नवरात्रि मनाते हैं और साल में 2 बार मनाते हैं, अभी चैत्र मास की नवरात्रि अभी पूरी हुई और दूसरी भी जो नवरात्रि होती है, अभी रामनवमी आई फिर दशहरा आएगा। तो कैसे नारी शक्ति है और नारी शक्ति का सम्मान अगर होगा तो ये भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। तो मानो उसके बाद कुछ विरोध तो हुआ, बाबा कराची चले गए, हैदराबाद सिंध से, वो बड़ा शहर है, लेकिन जो जिन जिन को छुट्टी मिली थी उनों का जैसे बाबा ने एक वो बड़ा परिवार बना लिया और सब कराची में रहने लगे। और ये सब देखेंगे तो तरुण बहने हैं उस समय, अभी तो सब दादियां, हमारी बुजुर्ग दादियां हैं वो, लेकिन उस समय कोई 12 साल, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 18 साल, मतलब ये 20 साल इतने तक ही थी सारी। और कैसे बाबा ने उनको ये शॉर्ट पैंट्स और शर्ट पहना, सवेरे सवेरे ये एक्सरसाइज करने जाते थे कराची में, वहां क्लिफ्टन बीच है सागर का किनारा, तो वहां जाकर के ये सागर के किनारे बैठ करके तपस्या करती थी या एक्सरसाइज करती थी मॉर्निंग का। बहुत अच्छा उनका है, कोई यहाँ जो कराची से आया हो या पाकिस्तान से आया हो, यहाँ आपके आपके दादा परदादा होंगे, नहीं आप लोग तो सब भारत में पैदा हुए होंगे, जो विभाजन के बाद भारत में आए वहां से कोई है, अच्छा थोड़े एक दो होंगे जी, अच्छा लड़काना से ना, हाँ अच्छा अच्छा लाहौर से कोई होंगे, कोई लड़काना से होंगे, तो ये सब कराची में थे। अब तो मानो उसके बाद 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल ये कराची में रह करके बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर तपस्या की। करीब 385 भाई बहने थे जिन्होंने जैसे संसार की निगाहों से बिल्कुल दूर गए, 37 to 50। अब इसी बीच, इन्हीं सालों के बीच में दुनिया बदल गई, सचमुच पूछो तो। एक और 1939 से 45 तक विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत ही खून खराबा हुआ था, उसका तो क्या वर्णन करें। लेकिन भारत के अंदर विभाजन हुआ 47 में, आप देख जानते हैं कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, मानो बहुत कुछ हुआ, बहुत दुख दर्द हुआ। ये सारा उसी समय जबकि ये तपस्या कर रही थी कराची में, मानो परमात्मा ने एक नया बीज रोपा था उस समय। तो एक और दूसरा विश्व युद्ध, दूसरी ओर भारत पाकिस्तान का बंटवारा, और फिर कैसे वो विश्व युद्ध भी तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया, हिरोशिमा नागासाकी पर। मानो 1936 से ही एक और परमात्मा ने नई सत्युगी सृष्टि की रचना का बीज डाला, और दूसरी ओर विनाश का भी बीज वैज्ञानिकों में पड़ा, क्योंकि उसी समय वैज्ञानिकों की बुद्धि में आया कि कैसे एक परमाणु का अगर विस्फोट किया जाए तो वो जो एनर्जी निकलेगी, एक मास से जो एनर्जी निकलेगी, आइंस्टाइन ने थियरी दी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो वो एनर्जी में अगर अनेकों ऐसे का एटम्स का विस्फोट हो तो कितनी भयंकर एनर्जी निकल सकती है और वो बहुत बड़ा विनाश ला सकती है। ये उस समय वैज्ञानिकों की बुद्धि में आया, मानो एक और परमात्मा ने नई दुनिया का बीज रोपा 36 में, और वही 36 साल कैसे विनाश का भी बीज वैज्ञानिकों में आया। और वो जो उनका ट्रायल उन्होंने किया जापान पर बॉम्ब गिराकर, और उसके बाद जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का आपके बारे में क्या विचार है, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर हम पत्थरों से खेलेंगे, यानी ये दुनिया की तबाही होगी, फिर स्टोन एज चालू होगा, ये होगा, मतलब उस भाव से कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी द लास्ट वॉर अगर ये हुआ। और तो अब उस समय ये सब बातें हुई, और यहाँ बाबा और मम्मा अलौकिक माता पिता के रूप में थे। मम्मा तो पता है 16 साल की थी जब आई, और बाबा तो 60 साल के थे, इनका आपस में कोई संबंध नहीं था। लेकिन मम्मा जिनका नाम राधे था, उनकी क्या विशेषता थी, जैसे ये अपनी माँ के साथ आई और समर्पित हुई तो इनकी आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत सुरीली। बाबा गीत लिखते थे, भजन लिखते थे, और ये गाती थी हारमोनियम पर तब, और ये सितार पर गाती थी। और ये जब ओम की ध्वनि करती थी तो बाबा से, बाबा भी करते थे, तो बाबा से कृष्ण का दर्शन, इनसे राधे का दर्शन, बाबा से श्री नारायण का दर्शन, इससे लक्ष्मी का दर्शन, साक्षात्कार जैसे करते थे, जैसे ये अलौकिक माता पिता के रूप में जो भी भाई बहने थे वो अनुभव करने लगे। तो अब मानो इस यज्ञ की स्थापना हुई, और कराची में 14 साल तपस्या की, और बाबा ने कैसे सारी विश्व को शांति का एक संदेश दिया या वाइब्रेशंस दिए। और 1947 में बंटवारे के बाद भी ये वहीं रहे, आना चाहते थे भारत में, लेकिन अभी और बातें क्या हुई कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध का, वो बाबा के बहुत बड़े मित्र थे, वो मुसलमान था, बाबा के बहुत बड़े मित्र थे वो, और बाबा को हमेशा उसके, यानी बाबा के प्रति उनकी उनके लिए इतनी भावना होती थी जैसे ये मेरे लिए तो इष्ट है। तो बाबा को उसने कहा आप मत जाओ, आप नहीं जाओ हिंदुस्तान, हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे, आपके आगे कुछ भी नहीं होगा, बाल बांका भी नहीं होगा, आप यहीं रहो, आप यहां रहेंगे तो हमारा ये देश पाक बन सकता है, पाक माना पवित्र बन सकता है, आप मत जाओ। अब भगवान का आदेश था, जो आदेश था कि जाना है लेकिन अभी नहीं, तो तब तक तो वहीं रहे। और 1950 में जब पूरा गणतंत्र बन गया भारत, और बिल्कुल फिर शांति हो गई, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया सब कुछ, उसके बाद परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत में जाना है, भारत ही विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु बनेगा, भारत ही सारे विश्व को शांति का संदेश देगा। भारत में ही फिर से वो सतयुग की दुनिया आनी है, भारत ही स्वर्ग बनेगा और आपको विश्व को शांति देनी है भारत से। ये परमात्मा का आदेश था। और कहां जाओ भारत में, वो भी आदेश मिला कि कराची तो सागर का किनारा था, अभी आपको भारत में कोई पहाड़ पर जाना है, पहाड़, क्योंकि पहाड़ से शांति का संदेश विश्व को देना है। अब कौन से पहाड़ पर जाए, भारत में तो बहुत हिल स्टेशन है, पर ये माउंट आबू क्यों चुना, क्योंकि एक तो कराची से बहुत नजदीक है, यहाँ पर ये पश्चिमी बॉर्डर है, यहाँ से अगर आप गए होंगे पीस पार्क, गए आप पीस पार्क हो आए ना, तो जैसे ऊपर जाते हैं वो 6000 फीट की ऊंचाई पर है, ये 5000 पीस पार्क है, 6000 गुरु शिखर है, तो आप जैसे चढ़े होंगे तो आपने बाई तरफ देखा होगा बिल्कुल तलहटी नीचे है, पहाड़ के ऊपर है आप, और उस तरफ पहाड़ देखे होंगे, बस पहाड़ के पीछे ही कराची है, यहाँ बॉर्डर तो बस यही है जो पहाड़ है और उसके पीछे ही कराची है। तो बाबा को ये आदेश मिला कि अभी पहाड़ पर जाना है, तो इसलिए ये पहाड़ पसंद किया, क्योंकि अब उसकी भी कहानी है। तो बाबा के जो पहले के गुरु थे उसका नाम था पता नहीं क्या भूल गए, तो वो वहीं थे, तो उन्होंने बाबा को कहा कि आप आबू जाइए, हमारा वहां छोटा सा आश्रम है आबू में, और आप वहां पर रहना, वो खाली पड़ा है, आप वो उसको यूज कर सकते हैं। स्वामी गंगेश्वरानंद जी बहुत ही प्रख्यात गुरु थे सिंधियों के, 108 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ा था, वो उनको दिखाई नहीं देता था लेकिन सारे शास्त्र उनको कंठ थे, तो वे उनके सबसे पहले गुरु थे। तो खैर, तो बाबा ने आबू में भेजा बहनों को, तो देखा कि यहाँ बहुत सारे महल है, वो जो आश्रम था वो तो बहुत छोटा था, वहां तो केवल 50 लोग ही रह सकते, अभी भी है, खंडर है वो, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या थी कि ये जो रोड बना ये अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि हिल स्टेशन को अंग्रेज ढूंढते थे भारत में, कहाँ हिल स्टेशन तो रोड बनाते थे, शिमला भी उन्होंने बनाया होगा ना कईयों ने, अगर तो। और गर्मी के दिनों में जो राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, यहाँ के जो कई राजाएं हैं वो यहाँ आकर के रहते थे, अप्रैल मई जून 3 महीना राजा लोग यहाँ आके रहते थे, अपना समर कैपिटल आबू था उनका। तो चारों ओर आप देखेंगे इन सब जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की, कुछ सौराष्ट्र की, उनके यहाँ महल बने हुए हैं। आप ज्ञान सरोवर भी आए होंगे तो लेफ्ट साइड में एक महल देखा होगा, वो अलवर पैलेस है। बीकानेर पैलेस है, नक्की ले घूमे होंगे तो पहाड़ पर एक महल देखा होगा, वो जयपुर पैलेस है, देखा, पता नहीं देखा या नहीं देखा। तो अभी तो ये सब या तो होटल है या तो स्कूल्स है, ये जो है वो अलवर पैलेस या आर्य समाजियों का स्कूल है, वहाँ बच्चे बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे देहरादून में भी बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ भी बोर्डिंग स्कूल्स है, चारों तरफ बहुत है। तो ये राजाओं महाराजाओं का वो स्थान था गर्मी के दिनों का, बाकी 9 मास यहाँ कुछ नहीं, ये आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर, तो बरसातों में तो कोई भी नहीं आता था, इतनी बारिश पड़ती थी जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त को कहते थे डिसगस्ट। और ये जैसे माउंट आबू चारों रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के बीच में ये ओएसिस है, मानो हरियाली है, बहुत बारिश पड़ती थी यहाँ, और ठंडी भी तो इतनी ठंडी जो बात मत पूछो, बहुत ठंडी पड़ती थी, लेकिन भगवान ने ये स्थान चुना। तो जब यहाँ माउंट आबू में 50 में कैसे आए वो भी एक कहानी है। तो जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने बहुत खुशी से छुट्टी दी और हम और एक शिप दिया, जहाज दिया, और कहा कि अपना सारा सामान लेकर जाओ, सब कुछ बांधा, सब कुछ ले आए, कोई एक सुई भी वहां छोड़ी नहीं। आप सोचो इतना सपोर्ट मिला सरकार का, जो जहाज भी दिया, ये जहाज है जो दिया, और कैसे सारा सामान उस जहाज में लेकर आए, और कराची से ओखा बंदरगाह है, ये जहाज में बैठे हैं, और ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में जामनगर के पास, तो वहां से बाय ट्रेन आए, पोरबंदर जामनगर की ये ट्रेन है, और 14 साल के बाद दुनिया देखी इन्होंने, ये सब बहने 14 साल, तो उस समय देखिए ट्रेन कैसे थी, 1950 की ट्रेन है ये। उस समय वो रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं थी जैसे अभी है, बाहर से झांक कर देख रहे हैं, आबू रोड स्टेशन पहुंचिए। तो यहाँ एक महल है जो अभी होटल है, वो महल ब्रिज कोठी भरतपुर राजा का वो महल था, तो वहां पर आकर के ये रहे, ये आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे हैं। ये सब अधिकतर बहनें थी, भाई थी, करीब 385 भाई बहनें आबू में आए हैं भारत में। अब यहां पर कैसे बाबा ने तपस्या की, 1950 में यहां आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, और फिर तो 1952 में हमें निमंत्रण मिला माउंट आबू से बाहर। हमारी बहनें जब यहाँ रही तो उनके रिश्तेदारों को पता चला कि हमारी बहू बेटियाँ, मतलब माताएं, वो भारत में आ गए हैं और माउंट आबू में हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। तो दिल्ली में सबसे पहले गए, यहाँ तपस्या की, और फिर कैसे हमारी ये मनोहर इंदिरा दादी है जो ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर थी निर्मला दीदी से पहले, अब 5-6 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो भी जब इस ज्ञान में आई तो 12-13 साल की थी, और उनको भी दिव्य साक्षात्कार हुए और वो भी समर्पित हो गई। अब उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के हमें इतना 14 साल जो आपने तपस्या की है वो हमें भी अनुभव आप कराओ। तो बाबा ने इनको कहा कि जाओ और वहां जो आपने पाया है आप उनको भी दो, बांटो। अब ये जैसे दिल्ली गई, अपने घर में गई, तो ये भी ओम की ध्वनि बहुत करती थी और गाती भी थी, तो ओम की ध्वनि जैसे ये करे तो जो उनके रिश्तेदार थे वो इनसे देवी का साक्षात्कार करने लगे। अब योर साक्षात्कारों की धुन चालू हुई, देवी का साक्षात्कार देवी जैसे, तो इतने इनके प्रति भावना बैठ गई परिवार वालों की, हमारे घर में तो देवी आई है, देवी आई है। फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, मंदिरों में जैसे ये जाती थी तो वहां भी सभा इकट्ठी हो जाती थी क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे अनुभव होते थे इनसे। फिर तो जमुना किनारे पर बैठ करके भाषण करती थी। अब इतने एक मास में इतने भाई बहने तैयार हो गए, जो अब वो कहे मैं तो जाऊंगी वापस माउंट आबू, तो उन्होंने कहा आप हमको छोड़ के कैसे जाएंगे, हम फिर हमारा क्या होगा। तो बाबा ने उनको लिखा कि अगर ये चाहते हैं कि आप वहां ही रहकर उनकी सेवा करो तो उनको कहो कि एक मकान लेकर के देवे, आप उस मकान में रहो और उनकी सेवा करो तो एक अलग से सेंटर बन जाए, क्योंकि घर में थी वो पहले, तो घर में तो ये सब नहीं कर सकते इतना। तो उन्होंने कहा मकान देना कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा हम सहज ले सकेंगे किराए पर। तो मकान एक किराए पर लिया जहां पर 2-3 बहनें रही, और बाकायदे पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर वो दिल्ली में खुला। और उसके बाद तो फिर तो निमंत्रण के पीछे निमंत्रण मिलते गए और हमारे सेवा केंद्र चारों ओर खुलते गए। तो दादी प्रकाशमणि और मम्मा, ये लगभग दादी प्रकाशमणि 1-2 साल ही छोटी थी मम्मा से, आप शायद 16 साल की थी, वो 15 साल की होगी उस समय जब शुरू में आई, लेकिन उनको कहते थे मुन्नी मम्मा, 3/4 मम्मा, 3/4 माँ, और वो मम्मा तो मम्मा ही थी। तो कैसे दादी प्रकाशमणि सदा मम्मा के साथ ही रहती थी, ये मम्मा लखनऊ में गई है, मम्मा माना माँ, तो अलौकिक माँ के रूप में ये लखनऊ में कैसे भाई बहने आए, और ये कानपुर में मम्मा, बहुत सारे फोटोज है तो हमने 2-4 ही डाले हैं। पर दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ साथ ही रहती थी और साथ साथ जैसे तपस्या भी करते थे, और मम्मा की धीरे धीरे कैसे विदेह अवस्था होती गई, बहुत तपस्या करती रही। और 24 जून 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया, काफी छोटी उम्र थी उनकी, ना 48 ईयर्स के लगभग थे जब मम्मा ने अपना देह त्याग किया। तो उसके बाद दीदी मनमोहिनी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, बाबा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कभी नहीं बने, गुरु भी नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं पर अलौकिक पिता के रूप में, पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपना कारोबार फाइनेंस जो कुछ भी बहनों को सौंपा। तो मम्मा थी पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उसके बाद दीदी मनमोहिनी। अब दीदी मनमोहिनी की भी अपनी कहानी है, वो भी आई जब वो 20 साल की थी लगभग, और बहुत धनी परिवार की थी, बहुत धनी। और इनके जो परिवार के थे वो चेनराय फैमिली भारत में बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने अब कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, मुंबई में केसी कॉलेज, जसलोक हॉस्पिटल, ये सारे जो हॉस्पिटल्स है ना, जो सिंधी लोग आए भारत में उन्होंने हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस बहुत खोले, क्योंकि उनका उनकी संपत्ति तो सारे विश्व में थी, सारे वर्ल्ड में वो बिजनेस करते थे। तो ये बहुत धनी परिवार की थी और इसको भी सबसे पहले बहुत साक्षात्कार हुए और ये समर्पित हो गए। तो ये भी बड़ी न्यूज हो गई कि ये इतनी बड़ी, इनका नाम था गोपी, कि गोपी ने भी अपना जीवन समर्पित किया। मानो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही और फिर बाबा निकलते रहे, दीदी बाबू में रहती थी और बाबा कई जगह पर भारत में जाते रहे, ये सब कुछ छोटे बच्चे। और फिर माउंट आबू में भी बहुत भाई बहने आते थे, ये जलंधर का परिवार है, कुछ जलंधर के भाई बहने यहाँ, बच्चे परिवार वाले सब यहाँ आते रहे। और बाबा भी सबको इतना स्नेह देता रहा, माता पिता की पालना देता रहा। बाबा पत्र लिखते थे और सेंटर्स हमारे बाकायदे चारों ओर खुलते गए भारत के कोने कोने में। ये बाबा के पत्र हैं, कुछ एक पत्र है बाबा के लाल अक्षर, बाबा लाल अक्षरों से लिखते थे, उर्दू लिखते थे ये, क्योंकि उस समय तो यही तो एक बहन कैसे उसका हिंदी करती थी, क्योंकि बाबा की भाषा कौन पढ़े, तो इसलिए वो हिंदी करती थी। ये बाबा की झोपड़ी, आप पांडव भवन देख चुके होंगे, गए थे आप ना परसों? नहीं गए तो आप माउंट आबू घूमे कि नहीं? जो पांडव भवन गए थे हाथ उठाए। अच्छा, आप ही नहीं गए केवल बहन जी, बाकी तो सब होकर आए। अच्छा अच्छा, एक ग्रुप नहीं गया। अच्छा, जो नहीं गए वो हाथ उठाए। अच्छा अच्छा, काफी नहीं भी गए। तो ये पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी है। तो पांडव भवन जो स्थान है ये पोखरान हाउस कहलाता था, ये और अभी जो हमारा ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स है तो उस समय पोखरान हाउस कहलाता था। पोखरान वो जगह है आबू में, ये राजस्थान में, जहां भारत का परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। रेगिस्तान है पर उसके ठाकुर की ये कोठी थी और चारों ओर बहुत सारे पहाड़ी पहाड़, मानो जमीन बहुत थी। तो कैसे ये स्थान चुना और बाबा यहाँ रहने लगे, 1969 तक बाबा उसी स्थान पर थे साकार में, और फिर 69 को बाबा ने अपना देह त्याग किया माउंट आबू में। तो ये बाबा की झोपड़ी है। बाबा के दिनों में ये झोपड़ी बहुत सिंपल थी, यहाँ खजूर के पेड़ बहुत है माउंट आबू में, तो उनके पत्तों से, ताजे पत्तों को लेकर के बाबा झोपड़ी बनवाते थे, जहाँ बाबा दिन के समय आकर के जैसे बैठते थे, एक गेस्ट रूम, विजिटर्स रूम के रूप में वो बनाते थे। तो गर्मी के दिनों में बहुत ठंडक रहती थी, तो ये झोपड़ी है। तो बाबा के देह त्याग के बाद फिर इसको परमानेंट शेप दे दिया है, तो अभी बांस की ये झोपड़ी है। तो यहाँ बाबा पत्र लिखते थे, किसी से मिलते थे, ये बाबा का जैसे सिटिंग रूम था। और फिर ये चारों ओर बगीचा है इस झोपड़ी के, अभी भी हम जाकर के बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाबा की झोपड़ी में। और ये क्लासरूम है जहां बाबा वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, बाबा इसी हॉल में चलाते थे। देखा होगा सबने, देखा ना जिन्होंने, तो ये पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल कहलाता है। चारों तरफ ये जो चित्र आपने देखे वो इसी हॉल में लगे हुए हैं और बाबा वहीं बैठ करके वाणी चलाते थे। जब भी हम रोज सेवा केंद्रों पर सुनते हैं वो वहीं बाबा चलाते थे। और फिर कैसे बाबा यही कहते थे कि सबका मालिक तो एक परमात्मा है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसी को ही याद करो, उसी से ही सबका संबंध है। तो मानो बाबा ये कहते थे। और ये बाबा का कमरा है जहां बाबा रहते थे, बाबा की वही खटिया है। और कैसे इसी खटिया पर 18 जनवरी के दिन बाबा ने अपना देह त्याग किया, 1969 18 जनवरी के शाम, करीब रात के 9 बजे थे। बाबा ने वाणी चलाई, भोजन हो गया, सब वाणी चला के हिस्ट्री हॉल से कमरे में आए। पर हिस्ट्री हॉल में ही बाबा थे, जब वाणी चला चुके थे तो बाबा हिस्ट्री हॉल के बाहर आए दरवाजे पर, दहलीज पर, और वहां बाबा ने मुड़ करके सभी बच्चों को तीन शब्द कहे। ये बाबा के अंतिम शब्द थे। वो तीन शब्द क्या कहे? बच्चे, सदा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी रहना। सदा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी। ये छुट्टी बाबा ने कहा, और बाबा कमरे में आए। बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे, हमेशा नमस्ते, गुड नाइट, पर छुट्टी माना जैसे कि छुट्टी ले रहे हैं, फिर नहीं मिलेंगे इस प्रकार से। लेकिन बाबा वो कह करके बाबा कमरे में गए, और जैसे पलंग पर बैठे बाबा अपने, वहीं पर दादी प्रकाशमणि उनके पास गई। दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहती थी, वो भी दीदी मनमोहिनी या दादी प्रकाशमणि मानो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रह करके साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ की सेंट्रल्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और दीदी मनमोहिनी नॉर्थ का, राजस्थान और ईस्ट और नॉर्थ ये सब देखते थे, और दादी जी गुजरात और महाराष्ट्र और बाकी नीचे का। तो दादी प्रकाशमणि उन दिनों में आबू में थे। 13 जनवरी को आबू में आए थे और 17 जनवरी को दादी जी वापस जा रहे थे। तो बाबा ने उनको रोका कि बच्ची आप थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि दीदी मनमोहिनी इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था, तो वहां बहुत बड़ा ग्राउंड मिला था इलाहाबाद में कुंभ मेले में, तो इसीलिए उसमें दीदी गए थे। तो दादी जी रुक गए, और 18 जनवरी के दिन सुबह से लेकर शाम तक जैसे बाबा ने दादी जी को सब कुछ जैसे बताते गए, कैसे ये यज्ञ चलता है, कैसे, क्योंकि दादी तो यहाँ रहती नहीं थी, दीदी रहती थी, तो दादी को जैसे सब बताया, आज ये स्टॉक कहाँ है, अनाज कहाँ है, बर्तन कहाँ है, ये कैसे, मतलब जैसे आज ही बाबा हैंडओवर कर रहे हैं सब कुछ। और रात को 9:15 के अंदर जैसे बाबा कमरे में आए, तो दादी प्रकाशमणि उनको जैसे गुड नाइट करने जाते हैं, तो जैसे दादी जी उनके सामने गए तो बाबा बैठे थे पलंग पर, बस आंखें बंद थी, और दादी ने देखा बाबा तो बैठे पर आंखें बंद है, तो बाबा को कहा बाबा बाबा, तो जैसे बाबा ऐसे बैठे थे, और तो दादी ने बाबा के हाथ पकड़े। उस समय दादी की आयु 45-46 वर्ष थी। बाबा बाबा, तो बाबा ने आंखें खोली, और जैसे आंखें खोली बस दृष्टि दादी जी को दी, और दादी ने बाबा के हाथ पकड़े हुए थे, तो दृष्टि और हाथ बस जैसे सारी शक्ति दादी जी को हैंडओवर कर दी, और वहीं उसी समय आत्मा उड़ गई, मानो शरीर छोड़ा। देखते देखते बाबा तो बैठे हैं और दादी खड़े हैं, और ऐसे हाथ और दृष्टि। दादी ने देखा ये हाथ ढीला हो गया, इस कांध हिल गया, नहीं क्या है ये, दादी को समझ में नहीं आया, लेकिन जरूर अब शिथिल हो गया वो शरीर, तो बाबा को लिटाया, बॉडी को डॉक्टर को बुलाया, लेकिन खत्म। खैर 18 जनवरी की रात बाबा ने देह त्याग किया, और ये पुण्य स्मृति दिवस, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा कैसे संपूर्णता को इन्होंने प्राप्त किया और अव्यक्त वतन के वासी बने, और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, अभी भी हम कहते हैं बाबा हमारे साथ हैं। ये भी एक अनुभव है कईयों का कि कैसे बाबा हमारे साथ है, वो तो बहुत ही अलग अनुभव है। लेकिन 18 जनवरी 1969 को हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं, और उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार आश्रम के अंदर ही किया गया, जो शांति स्तंभ नाम दिया गया है, आप वो देखा होगा, शांति स्तंभ पर गए होंगे तो वहीं पर हुआ। और 18 जनवरी के दिन बहुत हजारों भाई बहने आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ये चार धाम, बाबा के चार धाम हम बताते हैं कि जहां ब्रह्मा बाबा ने विचरण किया, तपस्या की और प्रेरणाएं दी, वातावरण इतना पावरफुल है। एक बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, ये बाबा का पहले प्लेग्राउंड था, बाबा वहाँ क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, मानो आउटडोर गेम्स, वहाँ और बिल्डिंग नहीं थी तो ये बाबा जैसे वहाँ खेलते थे। तो हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी, ये ब्रह्मा बाबा के चार तीर्थ धाम हम कहते हैं। और दीदी दादी कैसे दोनों ने मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिन दुगनी रात चौगनी गति से प्रगति की। तो दीदी दादी कि हम कहते थे दो हंसों का जोड़ा है, दो शरीर है लेकिन जैसे एक ही आत्मा थी, दोनों का इतना आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होती थी मानो दोनों ने मिल करके इस कार्य को संभाला। और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता जैसे रीढ़ की हड्डी बनकर सूर्य चांद बनकर के छिप गए और सितारे शक्तियां बहने उनको आगे किया। और फिर दीदी जी ने 1983 में अपना देह त्याग किया, 73 इयर्स की उम्र थी उनकी। और दादी प्रकाशमणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, फिर दादी तो और भी दादियां थी हमारी, तो 69 से लेकर 2007 तक दादी प्रकाशमणि मुख्य प्रशासिका रही। 2007 में 85 इयर्स की उम्र में दादी प्रकाशमणि ने अपना देह त्याग किया। ये उस समय की वरिष्ठ दादियां थी। तो जैसे उन्होंने सबने मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। 1970 में हमारा पहला डेलीगेशन विदेश गया, जिसमें निर्मला दीदी जो कल आपसे मिली वो भी 1970 में विदेश गई। और हमारा पहला सेवा केंद्र लंदन में 72 में खुला। फिर 72 के बाद अमेरिका में, अफ्रीका में, कई जगह खुलता गया। और ये पहला डेलीगेशन विदेश के भाई बहनों का माउंट आबू में आया है। और 1983 में पांडव भवन के सामने ये ओम शांति भवन बना, जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं इस यूनिवर्सल पीस हॉल में, जहाँ हम लोगों ने बहुत सारे पीस कॉन्फ्रेंसेस किए, यहाँ तक कि संत सम्मेलन भी किया हरिद्वार से और बनारस से। काफी सारे संत महात्मा आए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आए, और ये इंटरफेथ प्रोग्राम भी था जिसमें कई धर्मों के लोग भी आए और ये कार्यक्रम हुआ। और ये ज्ञान सरोवर 91 में जमीन ली गई थी, बहुत ही बंजर जमीन थी, कुछ कुछ पेड़ थे तो वो तो वैसे के वैसे रखे, बाकी तो सब बंजर था। और यहाँ आप देख रहे हैं वर्तमान समय कितना सुंदर ये कॉम्प्लेक्स है, जहाँ हमारी एकेडमी है। और ज्ञान सरोवर के समय ही ये ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में है। ये सब प्रकार की पैथीज है इसमें, एलोपैथी के साथ होम्योपैथी और बायोकेमिक और आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, सब सब कुछ है यहाँ, सब है। तो और अधिकतर हमारे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माउंट आबू के आसपास कई गांव हैं जहां फ्री सेवा करने जाते हैं। और उसके बाद ये भी स्थान छोटा पड़ने लगा, तो शांति वन, ये तलहटी जहां से पहाड़ शुरू होता है माउंट आबू का, वहां हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है शांति वन। वहां 1996 में जब हमारा डायमंड जुबली ईयर था, उस समय ये बड़ा हॉल तैयार हुआ जिसका नाम रखा डायमंड जुबली हॉल, जहाँ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वो भी देखा है कि नहीं देखा? वो भी देखा आपने, सारा देखा। तो हमारे जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो वही होते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में 85 इयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया। और शांति वन में उनकी दिव्य स्मृति में यह प्रकाश स्तंभ बना है, जहां उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ 25 अगस्त 2007। तो 18 जनवरी को हम पीस डे के रूप में मनाते हैं और 25 अगस्त को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रदरहुड डे, तो उस हिसाब से हम मनाते हैं। और हजारों भाई बहने आते हैं सब तरफ से। अब मुख्य प्रशासिका वर्तमान समय दादी जानकी जी है, इनकी उम्र 98 इयर्स है, लेकिन दादी जानकी जी अलर्ट इतने हैं, लाइक क्लासेस कराते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, प्रशिक्षण देते रहते हैं, और लाखों की सभाएं लगती है तभी भी दादी भाषण देते हैं, और दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका वर्तमान समय दादी हृदय मोहिनी जी है। आप भी 9 साल की उम्र में इस ज्ञान में आई, अपनी माँ के साथ आई, और जैसे ही बाबा के पास आई बाबा की इन पर दृष्टि पड़ी, ये ध्यान में चली गई, और मानो इनके पास ये महानता है, विशेषता है कि आप ट्रांस मैसेंजर हैं। आप कैसे ट्रांस में जाकर बाप दादा यानी शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा से सूक्ष्म वतन में मैसेजेस लाते हैं। और जब हमारे विशेष कार्यक्रम होते हैं तो शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे इनके तन में दिव्य प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वाणी चलाते हैं, जिसको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। अक्टूबर मास से मार्च मास तक हमारे ये कार्यक्रम चलते हैं, और अभी अभी संपन्न हुए हैं। भारत और विदेशों के लाखों भाई बहने यहाँ पर आकर के अपना इन्होंने बाबा से लाभ लिया, जो हम लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। हमारा चैनल है जो 24 घंटा चैनल चलता है, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो जिनके पास है वो हाथ उठाएं। अच्छा, सबके पास है। और पीएम टीवी भी इंटरनेट के माध्यम से है, और हमारे जो भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हम टेलीकास्ट करते हैं, आप लोग घर बैठे भी देखते होंगे। देखते हैं जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा का जो वाणी चली है वो देखा है वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े भाइयों में कम। तो अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक हमारे ये कार्यक्रम चलते हैं, और अभी उसके बाद जैसे आपको कल बताया हमारे और कार्यक्रम चलते हैं, वो अभी भी पूरा हुआ, 5 अप्रैल को पूरा हुआ, और उसके बाद हमारी बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें 1700 भाई बहनों ने भाग लिया। एनुअल मीटिंग हम करते हैं, सारे साल का प्रोग्राम बनाते हैं, और अभी इस समय यहाँ भी अलग अलग वर्गों के प्रोग्राम्स चलेंगे। 18-19 जो प्रोफेशंस है इनके वर्ग जो है उनके कार्यक्रम हमारे पास बने हुए हैं, सिलेबस बने हुए हैं, तो उन लोगों को बुला करके हम यहाँ उनके प्रोग्राम्स करते हैं, और शांतिवन में फिर और प्रोग्राम्स, उसमें हम लोग राजयोग शिविर जो कहते हैं वो शांतिवन में चलते हैं, जहाँ एक ही समय पर 5000 भाई बहने उनसे भी ज्यादा भाग लेते हैं और उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, आप भी आ सकते हैं। अभी तो आप मेहमान बन के आए हैं, लेकिन आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पक्के विद्यार्थी के रूप में, या आप कहेंगे ये परिवार के बच्चे बनकर के आप आएंगे, तो यहाँ पर और भी अधिक लाभ लेंगे। तो जो भी यहाँ आते हैं हमसे कई पूछते हैं कि यहाँ की फीस क्या है, तो हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। कल आपको वो कविता में बताया ना कि 5 खोटे सिक्के यहाँ की फीस है, समझ गए ना कौन से सिक्के? हाँ, तो यही सिक्के हैं, इन सिक्कों को ही देना है, बाकी तो जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वो हर एक की अपना यथा योग्यता शक्ति है, ये नहीं कि कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है इतना देना, पर ये 5 सिक्के तो कंपलसरी है। चलो ये न दे सको तो कम से कम एक तो सही, 5 में से 1 तो सही, या कोई भी बुरी आदत हो, बुरा व्यसन हो, कोई भी बुराई हो, कोई कमजोरी हो, वो शिव बाबा के यज्ञ में अब स्वाहा करके जाएं, यही हमारी आप सबसे अपेक्षा रहेगी। बाकी तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम आज और भी आपकी क्लासेस हैं, कल भी चलेंगे, जिसमें और गहरी बातें आपको मिलेगी। अभी तो केवल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास जो 77 मिनटों में सुनाने का प्रयास किया, 77-78 वर्षों का इतिहास 78 मिनटों में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका अगला सत्र होगा जिसमें कैसे हम अपने जीवन को तनाव से मुक्त रखें, वो आपका टॉपिक होगा। अभी 2 मिनट फिर से बैठेंगे, फिर आपका अगला टॉपिक होगा।